आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
प्रस्तुत है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। सरकार किशोरों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ और कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इस सप्ताह संसद में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर अधिकतम जुर्माना बढ़ाकर 9,90,00,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 99 मिलियन डॉलर तक किया जा सकता है। साथ ही ई सेफ्टी आयुक्त को नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे। सिडनी विश्वविद्यालय में डिजिटल कम्युनिकेशन एंड कल्चर के प्रोफेसर टेरी फ्लू का कहना है कि 16 वर्ष से कम आयु के लगभग 70% बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट अब भी सक्रिय हैं। उनका कहना है कि जुर्माने की राशि बढ़ाना महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ई सेफ्टी आयुक्त को मिलने वाले अतिरिक्त अधिकार अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। फिलहाल ई सेफ्टी आयुक्त कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ अदालत में कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लेबर सरकार के विवादास्पद टैक्स सुधार कानून पारित होने के बाद कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने कहा है कि सरकार निवेश संपत्तियों से जुड़े तथाकथित विडोज टैक्स के मुद्दे को दूर करने के लिए कानून में संशोधन करेगी। ये मामला उन निवेश संपत्तियों से जुड़ा है जिनके संयुक्त मालिकों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने या दंपति का तलाक हो जाने की स्थिति में कुछ टैक्स रियायतें समाप्त हो सकती हैं। जिम चार्मर्स ने कहा कि नए टैक्स नियम लागू होने से पहले इस खामी को दूर कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसे कैसे ठीक किया जाएगा। इस बीच स्काई न्यूज से बातचीत में विपक्ष लिबरल सांसद जूलियन लीजर ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग इन टैक्स बदलावों से खुश नहीं है। वहीं मरीन रेस्क्यू एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ORRCA यानी ऑर्का का ऑस्ट्रेलिया में वार्षिक वेल गणना दिवस आयोजित किया जा रहा है। वेल सेंसस डे के 27वें वर्ष में प्रवेश कर चुके इस कार्यक्रम के तहत देश भर के 27 अलग अलग स्थानों पर वॉलंटियर वेल्स की मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। प्रतिभागी पूरे दिन वेल के देखने की संख्या, उनके व्यवहार, मौसम और समुद्री परिस्थितियों के साथ साथ वेल के समूहों से जुड़ी जानकारी भी रिकॉर्ड करते हैं। और अब बात फीफा विश्व कप 2026 की। DR कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर अपने इतिहास में पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ये विश्व कप में DR कांगो की पहली जीत भी है, जो टूर्नामेंट में उनकी पिछली और एकमात्र भागीदारी के 52 साल बाद आई है। यान विसा ने अपनी टीम के लिए 2 गोल किए। पहला गोल पेनाल्टी पर और दूसरा स्टॉपेज टाइम पर आया। उज्बेकिस्तान के मुख्य कोच फाबियो कैनावारो का कहना है कि उनकी टीम मैच के अंत तक ऊर्जा खो बैठी, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर दिखा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इस सप्ताह वेनेजुएला में आए 2 भूकंपों से मरने वालों की संख्या 1,400 से अधिक हो गई है। मलबे में फंसे सैकड़ों लोगों की तलाश अब भी जारी है। राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए विदेशी टीमें वेनेजुएला पहुंच रही हैं। इस बीच कई लोग सरकार की ओर से पर्याप्त मदद न मिलने को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि मलबा हटाने के लिए पर्याप्त मशीनें उपलब्ध नहीं है। वहीं विपक्ष से जुड़ी एक वेबसाइट के मुताबिक 55,000 से अधिक लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। और अंत में चर्चा भारत की। भारत में दिल्ली और उत्तराखंड में संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों को मिले एक धमकी भरे ईमेल के बाद धार्मिक स्थलों, सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशनों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस ईमेल की सत्यता और उसके स्रोत की जाँच कर रही है। उधर अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। केर पान्योर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जहां एक युवक की मृत्यु हो गई। कई सड़कें बंद हैं और राहत बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें संस्करण के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ 28 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।